तीसरी चीज़ जो आपने फरमाया वो क्या था? दो चीज़ें बता दी ना, जो पहन लिया ख़राब हो गया ख़त्म हो गया वो आपका था, जो खा लिया टेस्ट आ गया अब चला गया, तीसरी चीज़ जो अपने हाथ से आगे भेज दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया यकूलुल अब्दू माली माली माली, बंदा कहता ही रहता है मेरा माल मेरा माल, ये मेरी स्टेटमेंट, ये मेरे डॉक्यूमेंट, ये मेरी कोठी, ये बंगला, लेकिन उसके माल में ये सिर्फ तीन ही है जो मैंने आपको बताए हैं, बाकी तो वो रसा का है, सब ले जाएंगे लोग। आज आप अपने बच्चे को हाथ ना लगाने दें अपनी गाड़ी की चाबी को, आज आप अपनी बेटी को अपने जेवर को हाथ ना लगाने दें, सिर्फ सांस की ये डोरी टूटेगी तो आपका नहीं रहेगा, आपके बच्चों का हो जाएगा, आपके वारिसों का हो जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पे क्या कहा, एक हदीस सुनाती हूँ, सही बुखारी की रिवायत है 6729 नंबर है और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं। आपने फरमाया कि अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरा विरसा दीनार की शक्ल में तकसीम नहीं होगा, जैसे आम लोगों का होता है। मैंने अपनी बीवियों के खर्चे और अपने आमिलों, आमिल कहते हैं वर्कर्स को, अमल करने वाले, अरबी में वर्कर्स को आमिल कहते हैं, अपने आमिलों की उजरत के बाद जो कुछ छोड़ा है वो सब सदका है। दैट इज़ द बेस्ट डिसीजन एनी वन कैन डू, यानी वो चीज़ें जो आप अपने पीछे छोड़ेंगे आम बंदे की, वो अल्लाह के हुक्म से बटेंगी। इसके लिए सूरत निसा का रुकू यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करी से शुरू करके बस समझे कि अराउंड 2 रुकू है, आपको उसमें सारी डिटेल्स मिलेंगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था अपनी ज़िंदगी में, आपका इस्तेमाल होता था, ठहरता नहीं था, कमाते थे। एक मौके पे आपने 100 ऊँटों की कुर्बानी की जिसमें 63 अपने हाथ से काटे, ज़िबा किए कह ले, थे ना पैसे। आपके 11 घर थे 9 घर थे, जितने भी कमी बेशी के साथ चलते रहे, लोगों से तो नहीं चंदा मांगते थे कि मौलवी साहब को खाना दे दो, ये ज़रा उनकी कोई रोज़ी रोटी का इंतज़ाम कर दो, क्यों हम कोई मांगते हैं, हम कोई गरीब। आज अपने दीन को भी बड़ा ही गरीब देखा और गरीब करके दिखाया, गैरों ने नहीं इस्लाम को इतना बुरा कहा जितना हमने किया, टूटी कुर्सियाँ मस्जिद में, कोई दीनदार आलिम कोई इमाम साहब लैंड क्रूज़र में गाड़ी में निकल कर आ जाएँ हम मस्जिद में नमाज़ पढ़ा लें, फितने लौटने लगते हैं, वसवसों के सांप दौड़ते हैं लोगों के दिलों में। कोई बेचारी दर्स देने वाली अपनी बेटे की शादी में भी किसी को बुला ले ना खुशी में, तो लोग बाद में उस पर वीडियो बना के दिखाते हैं, देखो ये दीनदारों की शाह खर्ची है। क्यों भाई, उसने ये कह दिया कि उसका सारा ख़ानदान गरीब है, उसका मियाँ भी कलाश है, उसके बच्चे भी, और पता नहीं किसने क्या लगाया, नहीं आपको क्या पता है। मैं एक जस्ट बात कर रही हूँ कि जाहिर पे क्यास करने से ज़्यादा मंदर खाते कुछ ढूंढ रहे होते हैं कि इनके पास पैसे कहाँ से आते हैं। आपने जो कपड़े पहने मुझे क्या पता आपने लिए कि आपने पहने हैं, आपको किसने गिफ्ट दिया है, मैंने जो पहना है आपको क्या पता किसने दिया किसने लिया, जाहिर पे क्यास कीजिए। अल्लाह के नबी ने अपनी ज़िंदगी में क्या किया, अपनी चीज़ें अपने बीवी के खर्चों और इनके अलावा जितना एक्स्ट्रा माल था जो विरासत बन सकता था आपने उनका सदका किया। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी सल्लम के वसाल के बाद गई थी, उनको तो ये पता था कि वसीयत के अहकाम हैं तो मेरा हिस्सा होगा, तो उनको अल्लाह के नबी की बात बता दी गई कि आपके लिए कुछ भी नहीं है, जो ज़िंदगी में था वो आपका हुआ। चले इस चैप्टर को क्लोज़ करते हैं क्योंकि ये हर तरफ खुला हुआ है। हम आज जिस माशरे में जी रहे लोगों को अपने आज की से ज़्यादा अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र है, और माजरत के साथ हमारे भाई हमारे शौहर बाप अमूमियत पे अपने इंडो पाक कल्चर बल्कि पाकिस्तानी कल्चर के मर्दों की बात करती हूँ कि जितना उनके पास इस वक्त है ना उसको ऑर्गेनाइज तरीके से ढंग से खर्च करें ना, तो मेरे अलग 50 साल का रिस्क रोटी कपड़ा खाना मौजूद है, लेकिन फ़िक्र क्या है, करोड़ों की नहीं अरबों की जायदादें हैं उनके पास, और हो सकता है आज रात को घर में मुर्गी लाने के लिए पैसे ना हों, ये गलत है। आप तो सारी ज़िंदगी टेंशनें काट के कब्र में जाएंगे, पीछे औलादों ने माले मुफ्त दिले बेरहम करना। तो खुलासा करती हूँ, अपने मर्दों को भी ये पैगाम दीजिएगा, भाइयों को बेटों को और अपने आप को भी इसी पर रखिए, जो आपकी हैसियत है ना उसके अंदर रहते रहते महज़ब तरीके से खाएँ पिएँ खिलाएँ, खाएँ तो खिलाएँ भी पहने तो पहनाएँ भी, लें तो दें भी, दें तो लें भी। जो कपड़े आप पहन लेते हैं सलीके से पहने, ये भी मैं टिप दे ही जाऊँ, आज बात खुली है तो सलीके से पहने, अच्छे तरीके से पहने, 2, 4, 6 दफ़ा अपना दिल पूरा करें, शौक पूरा हो गया आपका, अब उस कपड़े को अपने लिए सदका जारिया बनाएं। मसलन हो सकता है आपकी फैमिली में कोई सफ़ेद पोश फैमिली है, उनके घर शादी आ रही है, लेकिन मैं इस पे भी ख़िलाफ़ हूँ कि आप तो 5 लाख का जोड़ा पहन लेंगी, आपकी कज़न चले चचा की बेटी, उसके घर शादी आई उसके बेटे की, जिसके मियाँ की मुश्किल 50,000 तनख्वाह है, अब वो अपनी बीवी के लिए अपने बेटे की शादी पे ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा जो अफोर्ड कर सकेगा बड़ी मेहनत से वो 10,000 का, आप अपना 1 लाख 2 लाख का जोड़ा कहती हैं वो मैं अपनी कज़न्स को दे देती हूँ। मुझे लोगों ने कहा, कल परसों भी हम बात कर रहे थे कि मैं पहनने के बाद मैं किसी को देती हूँ और मेरी वो बड़े शौक से पहनती है, बट मसला करते हैं आप वहाँ भी, एक आपकी हैसियत है आपको सज रहा, कहते हैं ना कि चीज़ सजती बचती होती है ना, मुझे नहीं चीज़ सज रही आपको सजेगी, क्योंकि मैंने रफ एंड टफ पहननी है, आपने ज़रा अच्छे सलीके से पहननी है, फ़र्क हो गया ना। अब आपने जब वो 1 लाख का जोड़ा जब अपने बेटे की शादी पे बनाया था पहनना, तो आप अच्छी लगी, आप अपनी उस कज़न को देती हैं जिसके बेटे की शादी है, और आप वो उसको 1 लाख का जोड़ा देंगी ना, उस पर 10 लोग उंगलियाँ उठाएंगे, ये भी गलत तरीका है। रियलिस्टिकली पाकिस्तान में एक ऐसा ब्रांड बनाना है, और इंशाल्लाह हम नूरुल कुरान ब्रांड बनाएंगे, ज़रा बाकी जगहों से फारिग हो जाए, ज़िंदगी रही मेरी तो मैं तो बनवाऊँगी इनसे, कॉन्फिडेंस के साथ आप अपने उन कपड़ों को जो आप पहन चुके हैं उसको रिसाइकल करवाएं, कोई और ले ले, इज्जत वाला, इज्जत वाला जिसको 1 लाख के बनाना है वो ले, मेरा मसला समझे आप, 10,000 का जोड़ा लेने वाला अगर 1 लाख का लेगा तो वो भी नहीं कोई बात बननी, और दीन को क्या मिला, उस पैसे को रिसाइकल करें। अब आपने पहन लिया, अच्छे तरीके से पहना है, साफ़ सुथरा उसको ड्राई क्लीन कराएं। नॉर्वे में बनाया हुआ शादी का जोड़ा के नाम पे एक प्रोजेक्ट, बस वो बना के तो वहीं रोक लिया, क्योंकि इतने शादियों के जोड़े आने लग गए कि हमने रखने का है, और वो जोड़े हमारे चलते आज भी हैं, दुल्हनों का जोड़ा एक ही दफ़ा पहनते हैं मोस्टली, वो जोड़ा अपना साफ़ सुथरा करके स्कूल में दे जाती हैं। ये पिछले 2-4 साल में तो मिजाज ही बिगड़ गए हैं, जब से ब्रांड्स और ये औरतें मॉडल बन के आई हैं ना, बल्ला ही उससे पहले भी जोड़े बनते थे, हमारे अपने स्कूल की बच्चियाँ हमारे साथ काम करने वाले साथी उनकी उधर से जोड़ा लेकर पहनते थे, हमारे एक बच्ची है उसकी शादी उन दिनों हुई, इतना जोड़ा किसी ने अच्छा दिया, और तब उसने बताया, ये आज से 10 साल पुरानी बात है, जिसने सूट दिया यकीन करें मुझे आज भी वो सूट याद है, इतना हसीन सूट डिसेंट बड़ा नया लगा मुझे, उसने तब बताया था कि मेरा 60,000 रुपये का बना है, तो हमने मुंह में उंगलियां डाल ली थी, उस वक्त आम दुल्हन का जोड़ा 5 से 10 हज़ार का बनता था, उसने स्कूल को दिया, स्कूल में आ गया, उसका पर्स भी मैचिंग, जूती भी, जो कुछ भी था वो भी आ गया। हमारे अपने एडमिन्स में से एक बच्ची की शादी हुई, और वो बच्ची वो थी, वो अपने बारे में कहती कि मैं बिगड़ी हुई, इतनी बिगड़ी हुई थी, उसने वो जोड़ा स्कूल से लिया, स्कूल में उसका फंक्शन हुआ, और वो इतनी हसीन मॉडर्न लुक लड़की है कि आप उसको बाहर देखें तो वो गोरी लगती है। हमने अच्छा फंक्शन किया, निकाह भी पढ़ा और फिर खाना भी खिलाया, उसने स्टेज पे मेरी तरह यहाँ बैठकर लोगों को बताया था कि आज मैं सर से लेकर पाँव तक जो पहनी हुई हूँ मैंने नूरुल कुरान से लिया, उसने उसके पैसे दिए स्कूल को, वो सूट उसने पहना इस्तेमाल किया, उसके बाद क्या हुआ, जब उसका शौक पूरा हो गया उसने फिर वो स्कूल को डोनेट कर दिया। कई कपड़े ऐसे हैं कि कोई लेता है पहनने के लिए, स्कूल को 5,000 डाल के दे गए, ले गया पहन लिया वापस कर दिया, यानी मैं एक मिसाल दे रही हूँ, आइडियाज़ लगाइए, आप सबको अपनी रियलिस्टिक लाइफ में भी ये करना पड़ेगा, आफ्टर ऑल उसके 5,000 हैं या 5 लाख है, वो दीन के किसी काम में जाए, और हरज क्या है, जब आपने एक बार पहना और मैंने भी एक ही बार पहना है तो ज़रूरी है कि मैं भी उसी सारे जिहाद से गुजरूँ जिससे आप गुजर के एक जोड़ा बनाते हैं, कोई आसान काम है, समझ गया ना। तो इस तरह के पॉजिटिव प्रोजेक्ट्स बनाइए, कपड़ों को सलीके से पहनें, ख़राब ना करें, रफ ना यूज़ करें, और अच्छी हाइजीनिकली उसको यूज़ करने के बाद आप उसको किसी सदका जारिया के प्रोजेक्ट में डालें, वो पैसा आपका फिर दीन की नरिशमेंट में जाता है, फ़ायदा होगा। अब चलते हैं हम आगे दूसरी चीज़ पर जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है बात करना, वो क्या है कि व्हाट कम्स इन विरसा, विरसे को इंग्लिश में लेगेसी कहते हैं, और मैं दुख के साथ एक जुमला बोलूं, कुरान पढ़ने से पहले पहले मैंने इस मुल्क में जो नाम सुना था ना लोक विरसा, और आज बाहर नॉर्वे में हर साल 14 अगस्त को और ईदों के मेलों में ये जो लोग मेले के नाम पे जो गाना बजाना और पंपी ग्लैमरी ये चीज़ों को लोग समझते हैं, ये विरसा हमारा लोग विरसा लोग क्या कहते हैं, ससी पुन्नू, बांसुरियाँ, तबले, सरंगियाँ। हालांकि विरसा क्या है, गैर मादी चीज़ें। उधर क्या थी, मादी चीज़ें, मटीरियलिस्टिक थिंग्स। लेगेसी के अंदर नॉन मटीरियलिस्टिक थिंग्स आती हैं, मसलन अखलाकियात, एथिक्स। आपका इखलाक क्या है? नंबर दो, आपकी इकदार, रिवायात, फैमिली टर्म्स के, आपका ख़ानदान किन रिवायत पे था। जैसे हमारे यहाँ दादा के सामने सर पे दुपट्टा लेना रिवायत है, ससुर के सामने भी बड़े सलीके से अच्छे कपड़े पहनना, ये रिवायात थी। आज अफसोस है कि हमने अपनी रिवायात भी छोड़ी, दीन भी छोड़ दिया। हम इस्लाम को तो छोड़ दीजिए, हम तो रिवायात के भी पाबंद ना रहे इल्ला माशाल्लाह। तीसरी चीज़ इसमें हमारी जो आएगी, अखलाकियात, अकदार और रिवायात के बाद हमारी नेकियाँ या हमारी बुराइयाँ, द थिंग्स दैट यू कैंट मेजर। अब सवाल शुरू वाला लेक्चर, व्हाट आई एम लीविंग बिहाइंड, मैं अपने पीछे क्या छोड़ रही हूँ, विरासत या विरसा। तो जब विरसे की बात आती है तो कुरान की आयत सूरत निसा 85 खोल लेते हैं हम, मैं यशफा शफातन हसनतन यकुल लहू नसीब मिन्हा, वमैं यशफा शफातन सैयतन यकुल लहू किफ्लुन मिन्हा, वकान अल्लाहु अला कुल्ली शय्यिन मुकीता। जो भलाई की सिफारिश करेगा वो इसमें हिस्सा पाएगा, और जो बुराई की सिफारिश करेगा वो इसमें हिस्सा पाएगा, और अल्लाह हर चीज़ पर नज़र रखने वाला है। ये सोच अपनी ज़िंदगी को इस दुनिया में ही अच्छे कामों के करने के साथ साथ अच्छे कामों की प्रमोशन का ज़रिया बनाइए। आप यहाँ आए, अपने साथ किसी और को ले आए, आपको किसी ने बुलाया आप किसी और को बुला लें। मन दाल अलल खैरी कफाइली ही, जो नेकी के काम पर कोई काम करेगा वो उसके अजर को पाएगा। तो ये है गुड थिंग्स, यानी जिसको आप कहते हैं सर्कल में घुमा दीजिए अपनी नेकियों को। अब आइए ज़रा सा इसको एलैबोरेट करती हूँ कि हमने अपनी नस्लों को क्या दिया, हम क्या दे रहे हैं। अगर आज मैं फौत हूँ, डेट देख लीजिए, आज अमूमी लाइफस्टाइल पेरेंट्स का क्या है, उनको अपने पीछे अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाना है, वो मादी चीज़ें जो अभी हमने डिस्कस कर ली या गैर मादी चीज़ें, इस पे बात करनी है। एक शेर, गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से ज़मीन पर आसमान ने हमको दे मारा। ये शेर आप सब ने सुना हुआ। मैं आपको एक तहरीर पढ़ के सुनाना चाहती हूँ जो आपको भी फ़ायदा दे सकती है और मुझे भी फ़ायदा इससे होगा कि हम इस वक्त किस जनरेशन को तैयार कर रहे हैं। ये लफ्ज़ मेरे नहीं हैं, ये रोहा इश्फाक साहब कोई हैं सिस्टर, उनकी मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ूंगी। इसका टॉपिक क्या है, गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी। ये लिखती हैं कि कल शाम ही मैंने इकबाल का ये शेर पढ़ा, गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी। ये जुमला आप सबको समझ आ रहा है ना कि हमें जो विरसा अपने फोर फादर्स या असलाफ से मिला था ना, हमने गुम कर दिया। अक्सर माले मुफ्त दिले बेरहम है ना। अभी जिस विरसे पे मैं आपको भी लेके जाने लगी हूँ ना, हमारे असलाफ ने हमें यही दिया था, हमारे दादा नाना उससे ऊपर ऊपर वालों ने और सहाबियात और ताबईन और आइमाए कराम और मुहद्दिसीन की माओ ने ये फ़िक्र की थी कि हमारे बाद हमारे बच्चे कैसे हमारे लिए विरसा बने। तो इस पे अल्लामा इकबाल की ये पोइम थी, गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से ज़मीन पर आसमान ने हमको दे मारा। ये लिखती हैं कि मैं सोच ही रही थी कि ये जो आजकल माशरे का हाल है, वाकई हमने सब कुछ गंवा दिया है, हर वो चीज़ जो हमें हमारे पैगंबरों से मिली थी वो कहीं खो गई है। सोचते सोचते न जाने कब मेरी आँख लग गई, और ख्वाब में यूँ लगा जैसे किसी ने मुझे शाहराह हयात के सफ़र पर रवाना कर दिया। बहुत तारीकी थी, ठोकर खाई, आवाज़ आई, अंधी हो क्या, नज़र नहीं आता। मैंने पूछा, जिस चीज़ से ठोकर खाई वो चीज़ क्या थी? आवाज़ आई, ये जुमला बड़ा लिखा है इन्होंने, झूठ की गली में थोके का पत्थर। ये जुमला लिख ले, झूठ की गली में थोके का पत्थर। मैंने कहा, तुम्हारे पास तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की सदाकत का चिराग था, वो सदाकत के जिसकी मिसाल ज़माना देता था, वो कहाँ गई? समझ आई कि तुम झूठ की दुनिया में कैसे आ गए? तुम्हारा ताल्लुक तो सिद्दीक़ अकबर से था। फिर आवाज़ आई, गवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, यानी आज हम उम्मत मुस्लिमा ने सच छोड़ दिया। थोड़ा आगे चली तो मैंने देखा कि बिन्नत हवा, यानी हवा की बेटी बिन्नत हवा, दुपट्टे की दौलत बेच चुकी है और इकबाल के नौजवानों का अपनी नज़रों पे काबू नहीं है। वो इस कदर दलदल में फंस चुके हैं कि ना रिदा की सरसराहट, ना गिरेबान की चिड़चिड़ाहट, कोई भी ताकत इन्हें इस दलदल से बाहर निकालने को काफ़ी ना थी। मैंने पूछा, तुम्हारे पास तो हज़रत उस्मान गनी की हया थी, वो कहाँ खो गई? यानी आज की मुसलमान बेटी की रिदा खो गई और मर्दों की, लड़कों की निगाहों की हया चली गई। जवाब मिला, गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी। मेरे कदम और आगे बढ़े तो मैंने देखा कि लंबी कतार है, लोग आपस में लड़ रहे हैं, कोई हक के लिए आवाज़ बुलंद करने को तैयार नहीं, सब बातिल के आगे हार चुके हैं। ये मामला देखकर मैं घबरा गई। कहा, तुम्हें तो हज़रत अली की बहादुरी विरासत में मिली थी, वो शुजात के जिसकी कसम अल्लाह के महबूब खुद उठाते, वो कहाँ खो गई? यानी आज हम मुसलमान बुज़दिल हो गए। तो आवाज़ आई, गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी। मेरे कदम आगे चले, काफ़ी लंबी और दुश्वार थी कदम कदम पे। ये बुराइयाँ देख कर मेरे कदम डगमगा रहे थे। कुछ फासले पे देखा कि बच्चे वालदैन की इज्जत नहीं कर रहे, एक और दुखताना सूर इनके लिए दुख और तकालीफ का सबब बन गए हैं। ये तो वही थे ना जिन्हें इनकी राहत का सबब बनना था। और या मैं एक जुमला बोल देती हूँ कि ये वही थे जिनके लिए हम दुआएं करते हैं कि रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रत आयुनिन व जालना लिल्मुत्तकीना इमामा। माँ बाप दुआएं करते हैं अल्लाह बच्चों को आंखों की ठंडक बना दे, तो बच्चे तो माँ बाप की बात ही नहीं मान रहे। बड़ों की बच्चों के लिए शफकत और बच्चों की बड़ों के लिए इज्जत सब खो गई थी। मैंने पूछा कि तुम्हारे पास तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का नमूना मौजूद था ना, जिसे तुमने अपना रहनुमा बना के अपनाना था, वो ज़ात के जिसके अखलाक की गवाही खुद अल्लाह ने अपनी महबूब किताब में दी है, वो कहाँ गवा दिया? यानी अल्लाह के नबी ने बच्चों की तरबियत और बच्चों के साथ ताल्लुक़ और माँ बाप के साथ ताल्लुक़ की जो बातें बताई, वो किधर गई? तो आवाज़ आई, गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी। आँख खुली, यानी अब ये ख्वाब से बेदार होती है। आँख खुली तो पेशानी पसीने से शराबोर थी। मेरा दिल बस यही कह रहा था मुझसे, गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी। तभी तो सुरैया से ज़मीन पर आसमान ने हमको दे मारा। अब मुझे नहीं पता कि आप इससे कितने मुत्तफिक हैं, लेकिन मेरा दिल गवाही देता है कि आज हम मुसलमानों के अखलाकी इकदार के परखच्चे उड़ चुके हैं। अच्छी रिवायात ख़त्म हो चुकी हैं, भरोसा और ईमानदारी नापैद हो चुकी है, हमारी नस्लें हमसे मुख्तलिफ हो गई हैं, हम उनको कुछ कह नहीं सकते। हम अपनी आंखों से देखते हैं कि हमारे बच्चे अपने बच्चे वैसे नहीं पाल रहे जैसे हमने पाला था, लेकिन हम बोल नहीं सकते। हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि कल बच्चे माँ बाप को खुश रखने के शौकीन थे, आज माँ बाप फिक्रमंद है कि हमारे बच्चे हमसे खुश हैं। हम अपनी आंखों से देखते हैं कि कल बच्चे माँ बाप से डरते थे, आज माँ बाप बच्चों से डरते हैं, बल्कि जब बच्चे कमाने लग जाते हैं तो कांपते हैं उनके आगे, बोल नहीं सकते, गुर्राते हैं बच्चे, बादलों की तरह गरजते हैं, सिर्फ इसलिए ना कि आपको रोटी खिला रहे हैं, आप उनके पैसों पे चल रहे हैं। बच्चों के अंदर तमीज़ नहीं है, मोहब्बत नहीं है, रिश्तों की तमीज़ नहीं है। आज बच्चों के दिलों से मोहब्बत चलेगी, पैसा बोलता है, दौलत के अंबार लगा दो खुश हैं, उनकी बातें मानते जाओ खुश हैं, हाथों में कार्टून है, आंखें कहीं, नजरें कहाँ। आज का हमारा पेरेंटिंग स्टाइल क्या है, तो सवाल कीजिए क्या जो बच्चे इस वक्त हम छोड़ रहे हैं, और अब हमारे बच्चों के बच्चे, ये विरसा बनेंगे या विरासत? ये मादा परस्ती का शिकार हो गए कि गैर मादा परस्ती? अखलाक नहीं है, रिवायत नहीं। क्या जुरत थी बच्ची की कि घर में मेहमान आ जाए और वो अपने कमरे में बैठी रहे, और माँ जाके किचन में कबाब फ्राई कर रही है, आप पर मैं अपना वक्त याद तो करें। जरूरत थी मेरी आपकी हाथ के इशारे से दो कप चाय बिस्किटों के साथ, हमारी माँ ने हमें ऐसे पाला। आज आपकी बच्ची इशारा समझती? हाँ, वही कॉल करके ऑर्डर करके मंगवा सकती है, मामा क्या क्या ऑर्डर करना है, आई कैन हेल्प यू। आज हमारी बेटी बेटी नहीं है, और हमारा बेटा बेटा नहीं है, हमारी बहू बहू नहीं है, हमारा दामाद दामादी पैसे के गुलाम है। आप देते रहे उनको, अगर बाप मतलब सुसर कमा रहे हैं और वो खिला रहे हैं ना, तो बहू बेटा मजबूरन उनका साथ देंगे। आज ज़रा बेटे के हाथ में पैसे दे, बहू को कुछ नहीं कह सकते क्योंकि उसके बेटे का खा रहे हैं आप। अगली नस्ल में क्या होगा, ये पूजेंगे पैसे को, पूज रहे आज भी धर्म थीनार। छोटे छोटे बच्चे कहते हैं इट्स माई कार, इट्स नॉट योर, चुप करके बैठो नहीं तो उतर जाओ, ये बच्चा कहता है आपको। पैसा दिया, और ये कब हुआ? शुरू से आपने उसको मदर केयर और जॉनसन्स और ब्लू पिंक के कॉम्बिनेशन से पाला। आज बच्चा बाद में आता है, उसके कमरे की अलमारी पहले आती है। कभी आपके पैदा होने से पहले या आपके बच्चों के पैदा होने से पहले कभी जमने आए थे, जिसको कुर्ता टोपी कहते हैं उर्दू में? आज बच्चे की दुनिया से आने से पहले उसके बिब से लेके सुई सिलाई से पहले आता है, खोलते नहीं थे घरों में ये चीज़ें, किसको बताएं ये जबले किसके सिल रहे हैं? आज मादा परस्त, और ना करें तो कहेंगे चौनी की लाडनी की है। तो सवाल लिखिए, हम क्या देंगे, विरसा या विरासत? हम अगली नस्ल को विरसे में क्या दें? दर्द पटेगा। अब अगले जो जुमले बोलूँगी ना, ये मेरे दिल का दर्द है, आप खून से लिख सकते हैं इनको। क्या दूँ, एक लिस्ट बनाते हैं। आज आप अपने बच्चों को, बच्चों के बच्चे, या उनको आगे नसीहत करें, सबसे पहली चीज़ दुरुस्त अकायद, कन्विक्शन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। असूल सलासा भी कहते हैं, कब्र के तीन सवाल भी यही हैं। यही गम था याकूब को बिस्तर मर्ग पे, माँ याबुदू न मिन बादी, ए मेरे बच्चों मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? फिर बच्चों ने भी बड़े प्यार से कहा, अब फिक्र ना करें, हम आपके और इब्राहिम और इस्माइल के रब की इबादत करेंगे जो इलाहा वाहिदा। कितनी पुरसकून मौत आई होगी याकूब अलैहिस्सलाम को अपनी नस्लों से ये सब सुन के। क्या आज आप और मैं यकीन से कह सकते हैं हमने अपनी नस्लों को पुख्ता यकीन दिया? किस पे? नंबर एक अल्लाह पे, रसूलों पे, फरिश्तों पे, आखरत और यौम जज़ा पे, तकदीर पे और किताबों पे। ये छह इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं ना, तो आपका अकीदा पुख्ता होता है। यही अल्लज़ीन युमिनून बिलग़ैब। क्या आप अपने बच्चों और बच्चों के बच्चों की दीनी तालीम इस हद तक कर चुके कि उनका अकीदा पुख्ता? ग्रेट। और आपको ये भी बताऊं कि अभी जो तरतीब बताने लगी हूँ, हम नूरुल कुरान के प्लेटफॉर्म से एक कोर्स ऑफ़र करते हैं, इस्लाम A to Z। मैंने खुद इन पर्सन अटलांटा इंस्टीट्यूट से 4 वीक में ये कोर्स कराया था, और हर वीक के 4 डेज, टोटल 16 क्लासेज। अभी आप लोग भी नियत कर लें, वल्ला ही कर लें। पहले 4 दिन में हमने सिर्फ अकायद पढ़े, जड़, दरख्त की जड़, अल्लाह से ताल्लुक़ पता ही नहीं, रसूल का पता नहीं, तकदीर का नहीं पता, हमारा ईमान फरिश्तों पे एक रस्मी सा है, बात नहीं बनती। नियत कीजिए, और कहीं नहीं होता तो जाके YouTube से सुन लीजिए, अपनी तो इस्लाह पता करें, तो अकीदा दुरुस्त करना। सही बुखारी की रिवायत है बाबुल इल्म में, हज़रत अबू हुरैरा इसके रावी हैं, कि अल्लाह के नबी एक दिन लोगों में बैठे हुए थे, जैसे हम सब बैठे हुए, इतने में एक शख्स आया और बोला, या रसूलुल्लाह, मल ईमान, ईमान किसे कहते हैं? आपने फरमाया, ईमान ये है कि तू यकीन करे दिल से अल्लाह पर, इसके फरिश्तों पर, इसकी किताबों पर, इससे मिलने पर यानी आखरत, اور اس کے پیغمبروں پر اور یقین کرے پچھلے روز جی اٹھنے پہ. اس وقت ہمارے وہ بچے جو ویسٹرن ہائی اسکولوں میں یا ابراڈ جا چکے ہیں, گڑبڑ ہے بڑی سخت. ایک بچے نے پوچھا ماں سے, ماما آر یو شیور کہ اسلام از دا رائٹ ریلیجن؟ وائی شوڈ آئی انوائٹ مائی فرینڈ ٹو اسلام؟ میں اپنے دوست کو اسلام پہ کیوں بلاؤں؟ میں اس کے ساتھ بدھا کیوں نہ ہو جاؤں؟ ایک بچے کا سوال ہے ماں سے. اور مجھے حیرت ہوتی ہے جب اپنے ملکوں میں یہ سوال اٹھتے ہیں, ہم کہتے ہیں باہر سے بچوں کو اپنے ملک لے آؤ, بارڈر کراس کرتی پاکستان کا یہ مفتی اور امام کعبہ بن جائے. غلط سوچتے ہیں, ہمارے بچوں کے عقائد درست نہیں ہیں, تقدیر پہ بچے ناراض ہیں. آج ہماری نسل میں ڈپریشن ہے, ڈپریشن ہوتا ہی اس کا جو تقدیر سے ناراض ہوتا ہے. تو لہٰذا سب سے پہلے اپنی توحید پکی کریں. آپ کو مجھے یہ پیغام ہے. ابھی چند دن پہلے ایک لیکچر ہوئے, میں نے دل سے اس میں اس موضوع کو ڈیفائن کیا ہے, توحید روح کی پکار. اس نام سے آپ کو یہی نور القرآن کے چینل پہ ملے گا. آپ اس کو سبسکرائب کر لیں, سنیے اور سنائیے جس کو سنا سکے. تو اپنی توحید, پھر اپنی نسلوں کو پختہ توحید سکھائیں, اللہ کا اصل مقام سمجھائیں. جب یہ سمجھ آ گیا باقی باتیں خود ہی آ جائیں گی. اور صحیح مسلم کی ایک روایت ہے 144, حضرت معاذ بن جبل اس کے راوی ہے, کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ گدھے پہ سوار تھا, یعنی اس دور میں گدھے کو سواری کے لیے استعمال کرتے تھے. اس کا نام عفیر تھا. آپ نے فرمایا, اے معاذ, تو جانتا ہے کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ میں نے کہا, اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اس کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں, اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جو شخص شرک نہ کرے اس کو عذاب نہ دے. دعا کرے اللہ ہماری نسلوں میں شرک نہ لائے. یہ کوئی پیروں بابوں اور قبروں پہ جا کے سجدے کرنے اور ماتھے ٹیکنے کا انعام نہیں ہے, شرک کی تو بڑی باریکی ہے. تو فرسٹ تھنگ جس پہ آج آپ نے یہاں اٹھتے ہوئے نیت کرنی ہے, اپنے بچوں کی ایسی تعلیم کا انتظام کیجئے کہ ان کا تعلق باللہ, تعلق بالرسول, تعلق بالآخرہ, تعلق بالاسلام, تعلق بالتقدیر اور تعلق بالانجلز یہ پکا ہو جائے. سمجھے, نیویگیٹر میں صحیح ایڈریس ڈل گیا. گناہ ہوتا ہی تب ہے جب ہمیں اللہ کا مقام نہیں پتا ہوتا. سیکنڈ تھنگ جو آپ نے, میں نے آج سے اپنے بچوں اور بچوں کے بچوں کے لیے سکھانی ہے, وہ کہ اخلاقی اقدار, ایتھکس, اخلاقیات درست کیجیے, ایتھکس پہ آئیں گے. اور ایتھکس میں کیا آتا ہے؟ سچ بولنا, بڑوں کی عزت کرنا, چھوٹوں پہ شفقت, بنیادی اقدار, یعنی اخلاق اچھا رکھنا ہے. ہمارے بچوں کے اخلاق اچھے نہیں ہیں, معذرت کے ساتھ کہہ رہی ہوں, اچھے نہیں ہیں. وہ صرف اپنی پسند کے بندے کو سلام کرتے ہیں, ان کو صرف ان لوگوں کو ساتھ بٹھانا اور بیٹھنا جو ان کے لائک مائنڈیڈ ہیں. ان کو مارکیٹنگ والے اخلاق تو بہت آتے ہیں, چیزیں بیچنے والے, لیکن دوسرے نہیں آتے. اور اس پہ ایک روایت ہے سلسلہ تو صحیحہ کی 2735, ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں, اللہ کے نبی کے پاس ایک شخص آئے, شکایت کی کہ میرا دل بڑا سخت ہے, میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا, اگر تو دل کو نرم کرنا چاہتا ہے تو مسکین کو کھانا کھلایا کر اور یتیم پر دستے شفقت رکھا کر, یعنی غریب لوگوں میں بیٹھو اٹھو. آج جب پیسہ آتا ہے نا, اس کے ساتھ یہ ایک مسئلہ شروع ہو جاتا ہے, ہمیں غریب رشتہ دار بھی نہیں اچھے لگتے, دیندار رشتہ دار بھی نہیں اچھے لگتے, الا یہ کہ ہمیں واقعی ان سے بڑی دلی محبت ہو. تو بچوں کے اخلاق, نوکروں کے ساتھ کیسے بولنا ہے, ڈرائیوروں کو کیسے بلانا ہے, علی بابا, میڈس کو اوئے تو نہیں کرنا, غریب کو بار چل پیچھے ہٹ, ایسے نہیں بولنا. کیا بنا اگر اس کا سم اپ کروں؟ آپ اپنے آپ کو, اپنی نسلوں کو دیکھیے, ایمانداری ہے الحمدللہ, رحم دلی ہے بھی اور ڈالنی بھی ہے, غریبوں سے محبت ڈالنی ہے, اصولوں کی پاسداری, مین آف رولز, مین آف ورڈز, پھر عدل اور انصاف سکھانا ہے. اس میں ایک اور حدیث ہے سلسلہ تو صحیحہ کی 2660, نعمان بن بشیر اس کے راوی ہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا, ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے میں, ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرنے میں اور ایک دوسرے کے ساتھ شفقت اور نرمی کرنے میں, مومنوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے. ٹھیک ہے, جب جسم کا کوئی ایک عضو درد کرتا ہے تو سارا جسم اس کی وجہ سے بیماری اور بخار میں مبتلا رہتا ہے. है ऐसी हमारी चीज़। क्या सैलाब जदगान की मदद तो हमने कर दी फ्लड रिलीफ के नाम पे, लेकिन क्या हमने उनके उस दर्द को महसूस करके अपने किसी खर्चे में कमी की? एक्स्ट्रास तो उनको दिए, क्या आपने नीड्स वाली चीज़ें भी उनको दी कि नहीं दी, ये सोचना। तो दूसरे लोगों का दर्द महसूस करना। तीसरी चीज़, मुआशरे में हमारी साख क्रेडिबिलिटी के। अपने बच्चों को एक बात याद करवा दें कि बेटा तुम्हारा नाम बड़ा कीमती है, तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरी बेटी हो, तुम मेरे पोते हो, मेरी पोती हो, और मुआशरे में मेरा एक इज्जत का नाम है। लोग मुझे इस्लाम के नाम से जानते हैं, किसी को हाजी साहब के नाम से, किसी को शेख साहब के। मेरी इज्जत ख़राब ना करना। जवानी के नशे में बाज़ बच्चे माँ बाप की बदनामी का ज़रिया बन रहे हैं। और इसमें मैं कहूँगी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे लगी अपनी बेटियों की तस्वीरें देखिए और क्वेश्चन कीजिए अपनी बहुओं, पोतियों, नवासियों और ABCDC कि बेटा तुम्हारी ये तस्वीर देखकर लोग क्या सोचेंगे। क्रेडिबिलिटी, काबिल एतमाद बने, धोखा ना दें। दो नंबरी और 10 नंबरी की बातें हमारे बच्चों को नहीं, यानी अच्छी शोहरत दें दूसरे को। इस पे भी एक हदीस है सही सिलसिला तो सही हमें 2272 अबू हुरैरा से रिवायत है, आपने फरमाया हर आदमी की आसमान में मखसूस शोहरत होती है। यानी जैसे लोग दुनिया में फेमस होते हैं, मशहूर होते हैं या लोग जानते हैं उनको, आसमानों में भी हमारा कोई ना कोई नाम है, वहाँ भी कुछ लोग फेमस हैं, कुछ के वहाँ भी नाम है अच्छे या बुरे। फरमाया अगर वो शोहरत अच्छी हो तो ज़मीन में भी अच्छी होती है, और अगर आसमान वाली शोहरत ही बुरी हो तो ज़मीन में भी बुरी होती है। इसको हमारे यहाँ एक मुहावरे में क्या कहते हैं भला याद है? आवाज़ खल्क नकारे खुदा। हम जैसे अल्लाह की नज़रों में होते हैं ना, माशरे में भी वैसे हो जाते हैं। तो बच्चों को सिखाइए कोई ऐसा काम ना करें, दोस्तों में बैठ के सिगरेट ही पीनी है ना, शराब का एक चुस्का ही लगाया ना, बस वो ड्रिंक किया थोड़ा सा, मीटिंग में थे, इनसे रुके। फोर्थ पॉइंट, माशरे में हमारा किरदार क्या है? व्हाट आई एम गिविंग टू द सोसाइटी, पॉजिटिव और नेगेटिव, मुस्बत या मनफी। क्या आपके बच्चों के बच्चे और आप खुद कोई प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, कोई अच्छी रीत डाली है या माशरे को ख़राब किया? जैसे वो मैं उनका एक लेक्चर का क्लिप सुन रही थी, डॉक्टर जावेद साहब हैं, तो वो कहते हैं कि मैं डॉक्टर, मैंने मेहनत की, खूब पढ़ा लिखा, मेरा स्टेटस बना, मैं डॉक्टर बन गया। अब मेरे बाद मेरा बेटा भी सेम डगर पे चल के अगर एक कामयाब डॉक्टर बन जाता है तो ये क्या बड़ी बात है? ये तो पर्सनल लेवल है। सक्सेस क्या है किसी मुल्क की, कि फ़र्द के मुकाबले में माशरा तामीर हो, मेरे वजूद से शहर में कोई अच्छा यूनिट शुरू हो जाए, या ऑक्सीजन मास्क का कोई एक ऐसा इंतज़ाम हो जाए, इस शहर में मेरी वजह से कोई कुरान क्लास शुरू हो जाए। यानी सोसाइटी को आप क्या दे रहे हैं? और आज इतना ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट हो गए लोग, अपने काम करके कहते शुक्र है अब एक बच्चे का भी घर बन गया, अब दूसरे का भी बन गया, अब एक ही भी शादी, और हमारी तो दुआएं होती हैं अल्लाह मुझे इन बच्चों की शादी तक ज़िंदा रखना। सोचते नहीं, मुआशरे को कुछ दीजिए। निसाई की रिवायत है 3681 अबू हुरैरा इसके रावी हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया जब इंसान मर जाता है तो इसका अमल भी ख़त्म हो जाता है सिवाय 3 अमाल के जिनसे इसे मरने के बाद भी फ़ायदा पहुँचता है। नंबर 1 सदाकतुन जारिया, ऑन गोइंग चैरिटी। नंबर 2 इल्मुन युनतफ़ऊ बादहु, इल्म जिससे उसके बाद भी फ़ायदा उठाया जाए। और नंबर 3 नेक और सालेह औलाद, यानी बेटा बेटी जो उसके लिए दुआ करता है। आप अपने लिए देखिए कि इनमें से तीनों हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर कमी है तो उसको पूरा कीजिए। फिफ्थ पॉइंट पे चलते हैं, ताल्लुकात और रवाबित, रिलेशंस। इस बिरु व सा बिरु व रबितु वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, सूरह आले इमरान की आखिरी आयत का मैसेज है। रवाबित, दूसरों से मिलना, ताल्लुकात कायम करना। ये कारोबारी ताल्लुक आप रखते हैं, रखिए, आपकी मर्ज़ी है। ज़ाहिर है ताल्लुकात उनको खाने खिलाएंगे ताकि वो आपसे डील करें, सीधी सी बात है। आप उनको एयरपोर्ट पर गाड़ी भेजते हैं, बिल्कुल भेजेंगे, इसलिए कि कल आप जब कहीं जाएंगे तो वो भी आपको भेजेंगे। ये डीलिंग्स नहीं होती। डीलिंग क्या है? हदीस सुनिए, सिलसिला तो सहीहा की रिवायत है 2374, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है। अल्लाह के नबी ने इनसे फरमाया, जिसको नरमी अता की गई, इसको दुनिया और आखरत की खैर और भलाई से नवाज दिया गया, और सिला रहमी, हुस्न अखलाक और पड़ोसी से अच्छा सलूक करने जैसे उमूर खैर यानी खैर के काम घरों और कबीलों को आबाद करते हैं और उम्र में इजाफा होता है। बच्चों को इंसान दोस्त बनाइए, हमसायों का दुख दर्द पूछें, अंकल को, साथ वाले को किसी डॉक्टर पे ले जाएं। यानी ये एथिक्स बच्चों को सिखाने की बहुत सी ज़रूरत है। नंबर 6, एम्पैथी, रहम दिली और दूसरों की मदद का जज्बा, ये अपने बच्चों में लाइए। दूसरों की जगह पे खुद को देखें। नौकर ने गलती की, नौकर ने एडवांस मांगा, बुरा लग रहा है, गुस्सा आ रहा है, ज़रा आप भी तो उसकी जगह पे जाइए, आप भी तो कल हो सकते हैं ऐसे। फिर उनकी तकलीफ़ को महसूस करना, मुश्किल में लोगों की मदद करना। इस पर रिवायत है सही मुस्लिम 6853, अबू हुरैरा इसके रावी हैं। जो शख्स किसी मोमिन पर से दुनिया की कोई सख्ती दूर करे तो अल्लाह ताला इस पर आखरत की सख्तियों में से एक सख्ती दूर करेगा, और जो शख्स मुफलिस को मदद दे यानी इस पर तकाजा ना करे और सख्ती ना करे अपने कर्ज़ के लिए, अल्लाह ताला इस पर आसानी करेगा दुनिया और आखरत में। और जो शख्स किसी मुसलमान का ऐब ढांकेगा दुनिया में तो अल्लाह ताला इसका ऐब ढांकेगा दुनिया और आखरत में। अल्लाह बंदे की मदद में रहेगा जब तक बंदा अपने भाई की मदद में रहेगा। आज बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लोग कहते कारोबार डूब रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, मनी मैटर्स है, क्राइसिस है, पेट्रोल महंगा है। बच्चों को बोलें कि ये काम करें ताकि अल्लाह उनके हाथ खोल दे। 7 थिंग, इल्म की दुनिया से अपने बच्चों को मुतारिफ़ कराएं, दीनी और दुनियावी दोनों। नियत कीजिए कुरान की इन डेप्थ स्टडी आपका गोल है, लेकिन एटलीस्ट फातिहा से नाज तक कुरान का तर्जुमा आपके हर बच्चे और बच्चों के बच्चे को आए। फिर हदीस और सीरत का इल्म दीजिए, इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ाइए अपने बच्चों को ताकि उनको पता चले क्या विरसा था हमारा, हम कौन थे। फिर साइंस और जदीद उलूम सिखाइए, इसके लिए तो माशाल्लाह कोशिशें हो रही हैं, यूनिवर्सिटीज़ भरी पड़ी हैं। 2 दिन पहले हमारा एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर था, 5000 गर्ल्स हैं उस यूनिवर्सिटी में, ओवरऑल 25000 स्टूडेंट्स हैं मेल एंड फीमेल्स उनके कैंपसेस में, तो जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अपने बच्चों को दुनिया के भी सिखाएं लेकिन साथ दीन का। फिर जदीद रिसर्च करवाएं, हमारे यहाँ रिसर्च वर्क बहुत कम है। बुखारी की रिवायत ले लीजिए, इसकी दलील में किताबुल इल्म में अल्लाह के नबी की ये बात क्या है, अल्लाह का ये इरशाद, फ़ालमन्नहु ला इलाहा इल्ला, आप जान लीजिए कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तो गोया अल्लाह ने इल्म से इब्तिदा की, लफ्ज़ क्या है फ़ालम, पहला लफ्ज़ क्या था पहली वही का, इक़रा, इल्म से ताल्लुक़ है इस्लाम का। और हदीस में कि उलमा अम्बिया के वारिस हैं और पैगम्बरों ने इल्म ही का विरसा छोड़ा। फिर जिसने इल्म हासिल किया इसने दौलत की बहुत बड़ी मकदार हासिल कर ली, और जो शख्स किसी रास्ते पर हसूल इल्म के लिए चले अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत की राह आसान करते हैं। दुआ करें आपके बच्चों को दुनिया और दीन दोनों के इल्म से मोहब्बत हो जाए। 8वीं चीज़ है जी, नेकी और बदी की तमीज़ देकर जाइए अपनी नस्लों को, ये बहुत ज़रूरी है वरना फिसलने का डर है। दलील लेते हैं, तिर्मिज़ी की रिवायत 2389, नवास बिन सुमान से रिवायत है, एक शख्स ने अल्लाह के नबी से नेकी और बदी के बारे में सवाल किया। आपने फरमाया, नेकी अच्छे अखलाक का नाम है और गुनाह वो है जो तुम्हारे दिल में एक खटक पैदा करे, और लोगों का इस पर मुत्तले होना यानी लोगों को इसकी इत्तला मिल जाए ये तुमको नागवार गुजरे। क्या करें, नेकी का मफहूम समझाइए, नेकी के मौके ढूँढिए, अपने लिए और बच्चों के लिए सदका जारिया के काम कीजिए, फिर बदी के बारे में आगाह कीजिए और बदी से रुकने के लिए नसीहत कीजिए, यानी अच्छे बुरे का फ़र्क दीजिए अपनी नस्लों को। 9th पॉइंट क्या है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, मजबूत बुनियादें खड़ी करके जाए अपने बच्चों के लिए। बुनियाद मजबूत होगी तो इमारत मजबूत होगी। किस चीज़ की स्ट्रॉन्ग बुनियाद, करैक्टर बिल्डिंग, लूज़ करैक्टर नहीं। बच्चों पे एतमाद करें, इन्हें छोटे छोटे फैसले करने का हक दीजिए। करेक्टर बिल्डिंग में बहुत कुछ है, डिसीजन मेकिंग है, बच्चों में एतमाद दीजिए, पूरा एतमाद कीजिए, उम्मत पूरा एतमाद बनेगी इंशाल्लाह। फिर बच्चों की तरबियत इस्लामी बुनियादों पर कीजिए, और इसमें वल्लाही स्कूल्स सिर्फ अपने उन बच्चों की जो इंग्लिश मीडियम्स या बहुत ब्रांडेड स्कूलों में जाते हैं उनकी बुक्स चेक कीजिए। अभी 25 दिसंबर गुजरा है, मैं गवाही दे सकती हूँ कि शायद मेरा हाल 25-30 हज़ार रुपये तनफीस होगी बच्चे की स्कूल में। और बच्चा क्रिसमस सॉन्ग आ रहा था, मेरे हस्बैंड ने सुन लिया। मैंने कहा क्या, तो वो एकदम बच्चा चुप हो गया। बाद में मुझे ने कहा तुमने ऐसे नहीं था करना, क्योंकि वो डर गया कि मैंने कुछ गलत किया। पता चला स्कूल वाले सिखा रहे हैं, पाकिस्तान के एक स्कूल के बच्चे को क्रिसमस सॉन्ग सिखा रहे हैं आप। क्या ज़रूरत है आपको बाहर जाने की या बाहर वालों के इधर आने की? ऐसा ना कीजिए। बच्चों की तरबियत इस्लाम की बुनियाद पर कीजिए, बुनियादी अकायद मजबूत कीजिए तो किरदार मजबूत होगा। ये ट्राइंगल होता है, एक से दूसरी चीज़ है। तिर्मिज़ी की रिवायत है 2609, अब्दुल्ला बिन उमर से रिवायत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पे है। बुनियल इस्लाम अला खमसे, गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद है बरहक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, नमाज कायम करना, ज़कात देना, रमज़ान के रोज़े रखना और बैतुल्लाह का हज करना। तो बच्चों के दिलों में इन सारी चीज़ों को मजबूत कीजिए। سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى خير خلقه واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين।